लोगों से पूछा यहाँ क्या हो रहा है, अरे कहा महाराज शील निधि का बेटी का स्वयंवर होने जा रहा है। स्वयंवर, स्वयं माने स्वतः यानी खुद, वर माने पति। जब कन्या स्वेच्छा अनुसार पति का चुनाव करती थी उसे ही स्वयंवर बोला जाता था। तो जिस समय देवर्षि नारद पहुंचे कि मुनि कौतकी नगर ते ही गयासीन सनपू छत भय चारित रूप सुनाए सुन तब चरित रूप ग्राह आए करी पूजा नृप मुनि बैठाए। पहुंचे उनकी वंदना करके सिलदी महाराज ने इनको बैठाला, ऊंचा स्थान दिया, कहा मुनिवर अहो भाग्य हमारे, आप हमारे घर पे आ गए। प्रभु जब आ ही गए हो तो कम से कम इस भक्त की साधना पूरी हो जाए। अपनी राजकुमारी विश्वमोहिनी को लाकर चरणों में डाल दिया। नाथ मुनिवर आप जरा इतनी बता दें कि इस कन्या के भाग्य में कैसा पति लिखा है। आज जिस समय उसके हाथ की रेखाओं को देखा तो साथियों आज देवर्षि नारद का दिमाग भी चकरा जाता है, दिमाग भी चकरा जाता है। आज विचार करते हैं क्या क्यों ऐसी हाथ की रेखाओं को तो आज तक हमने नहीं देखा। हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि जो यही वाराई अमर सोई होई। जो यही वाराई अमर सोई होई समारा भूमि ते ही जीती न पाई। अमर सोई होई समर भूमि कही जीत ना कोई। जो इस कन्या को वरेगा अर्थात जो इसका पति होगा उसके अंदर इतने गुण संपन्न होंगे कि वो अजर होगा अमर होगा, उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। लेकिन नारद जी के अभिमान आ जाने की वजह से बुद्धि पर मायावी जो पर्दा पड़ा है ना तो इनका सोचने का ढंग कुछ और ही है, अलग ही निराला है। ये सोचते हैं हाथ की रेखाएं बताती हैं कि जो यही वरई अमर सोई होई, जो इस कन्या को वरेगा वो अमर हो जाएगा, युद्ध में उसे कोई जीत नहीं पाएगा, वो संसार में अजय हो जाएगा। जबकि हाथ की रेखाएं बताती हैं कि जो इस कन्या के साथ में विवाह करेगा उसके अंदर ये लक्षण होंगे, और ये समझ रहे हैं कि जो शादी कर ले उसके अंदर ये लक्षण आ जाए। उल्टा ही मामला हो गया। मन में विचार आया कि काश अगर मेरी शादी कहीं इस कन्या के साथ हो जाती ना, अरे मैं कितना भाग्य वाला हो जाता, अजय हो जाता, अमर हो जाता, संसार में पूजनीय हो जाता। लेकिन जब अपनी शकल देखी ना, सफेद बाल नजर आए, बुढ़ापा, मन में सोचा अरे इतने शर्म दरबार के अंदर बड़े बड़े राजकुमार आएंगे उनके आगे ये कन्या मुझ बूढ़े के गले में माला क्यों डालने लगी। साथियों बुढ़ापे जैसा कोई स्वर्ग नहीं, बुढ़ापे जैसा कोई नरक नहीं। यदि वृद्धावस्था में संतान आज्ञाकारिणी है तो वृद्धावस्था ही स्वर्ग है, यदि संतान दुखदाई है तो वृद्धावस्था ही नर्क है। मनुष्य का अगर वास्तविक कोई साथी है असली, तो बुढ़ापा ही है। बचपन आता है और चला जाता है, जवानी आती है और चली जाती है, लेकिन बुढ़ापा कहता भैया घबराओ नहीं, हम तुमको साथ में लेकर ही जाएंगे। आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में, खाट पर पड़े पड़े करोगे मलमूत्र त्याग, और नाम क्यों ना जपो भैया हरि का जवानी में। वृद्धावस्था को देखा, मन में विचार करते हैं कि भाई हमारे गले में माला कैसे पड़ेगी, काश अगर हम सबसे सुंदर हो जाएं तो कन्या हमको देखकर माला डाल देगी, लेकिन सुंदर बने तो कैसे बने। तब तक सोचा भाई दोस्ती भगवान से किस दिन के लिए की है, अगर किसी से दोस्ती की जाती है ना तो इसीलिए की जाती है कि वो वक्त पर काम आवे। बाबा गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदि काल परखिए चारी। अरे आज मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि जरा दो चार दिन के लिए आप अपनी खूबसूरत शकल हमको उधार दे दीजिए, क्योंकि आपसे कोई सुंदर है नहीं, और जब प्रभु की शकल हमको मिल जाएगी तो फिर क्या है, कन्या सबसे पहले हमारे गले में माला डालेगी, शादी हो जाएगी, प्रभु की शकल उनको वापस कर दूंगा। आज कुविचार को सोच कर चल दिए, हरि सन मांगो सुंदर ताई, हरि सन मांगो सुंदर ताई, होई है जाति गहारू अति भाई, भगवान के पास जाऊंगा, उनका सुंदर रूप मांगूंगा, ये सोच करके प्रभु के पास पहुंचे। और प्रभु जान गए कि ये किस लिए आए हैं। समय नारद जी पहुंचे भगवान के समक्ष, और प्रभु तो पहले ही से समझ रहे हैं कि देवर्षि नारद हमारे पास में क्यों आ रहे हैं। प्रभु ने देखा, आओ देवर्षि, कि कहिए कहिए देवर्षि आज आगमन हुआ है कैसे यहाँ, कहिए कहिए देवर्षि आज आगमन हुआ है कैसे यहाँ, आए हो मुनिवर कहाँ कहाँ, आए हो मुनिवर कहाँ कहाँ, जाओगे मुनिवर कहाँ कहाँ, जाओगे मुनिवर कहाँ कहाँ, तो देवर्षि नारद जी क्या बोलते हैं, हे सुन लो मेरे परम प्रभु, हाँ कुछ आज मांगने आया हूँ, कुछ आज मांगने आया हूँ, प्रभु इच्छा पूर्ण करेंगे, प्रभु इच्छा पूर्ण करेंगे मेरी, बस यही भावना लाया हूँ, इसलिए आए हो, क्या चाहते हो। तो देखिए देवर्षि नारद जी क्या कहते हैं, कृपा दृष्टि का मुझ पे कर दो इशारा, कृपा दृष्टि का मुझ पे कर दो इशारा, कृपा दृष्टि का प्रभु की कर दो इशारा, दृष्टि का प्रभु जी कर दो इशारा, कृपा दृष्टि का प्रभु जी कर दो इशारा, मिल जाए प्रभु जी हमको अब तो सहारा। जही दीदी हो नाथ ही तो मोरा, करहु सो देगी दास में छोरा। प्रभु जिस प्रकार से भी हमारा कल्याण हो आप वही करें, हमारे जीवन में जिस चीज की कमी आप इस वक्त समझते हैं वही हमको दें। मतलब ये है कि प्रभु आपकी सकल आपकी सुंदरता हमको चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से छिपे भाव में देवर्षि नारद ने कहा उसी प्रकार से प्रभु भी कहते हैं कि जाओ देवर्षि, जिस काम में तुम्हारी भलाई होगी हम वही काम करेंगे। तो देवर्षि समझते हैं कि हमारी भलाई इसी में है कि प्रभु की सुंदरता हमको मिल जाए। मतलब ये हुआ कि प्रभु कह रहे हैं कि जाओ हमने अपनी सुंदरता अपना खूबसूरत रूप तुमको दे दिया। लेकिन भैया भगवान ने इनको बानर की शक्ल दे दी, बंदर की। नारद जी ये समझ रहे हैं कि सबसे सुंदर हम ही हैं, लेकिन सुंदर की बजाय सुंदर बनकर बंदर का रूप लेकर और पहुंचे जिस समय महाराज शील निधि के स्वयंवर में, सबसे ऊंचे आसन पर बैठ गए। शंकर जी के गण जो है ना वहां पर बैठे हुए हैं, बार बार देखकर देवर्षि नारद को मुस्कुराते हैं कि वारे बाबा शादी करने आए हो। ये समझते हैं कि भाई बच्चे हैं। पालक बंदर एक सुभाऊ, जहां जाहीं तहां करहीं उपारू। जहाँ जाए तहाँ करही उपाऊ, शंकर जी के गण देखकर इनको बार बार मुस्कुराते हैं। देवर्षि समझते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों का स्वभाव ही हंसना होता है, हंसते होंगे, इन्हें क्या मालूम कि हम यहाँ पर बानर की शक्ल लिए हुए बैठे हुए। उधर जब विश्वमोहिनी राजकुमारी आती है और सबकी तरफ देखती है, लेकिन देवर्षि नारद जी की तरफ नहीं देखती, इसलिए ऐसा ना हो कहीं देखकर हंसी आ जाए और बाबा हमको श्राप दे दें। हाथ में जयमाला लिए इधर उधर चल रही हैं सखियां जो है ना, उनका हाथ पकड़े हुए कहती क्या है कि धीरे चलो सुकुमार कुमारी, धीरे चलो। धीरे चलो सुकुमार कुमारी, धीरे चलो। धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो सुकुमार कुमारी, धीरे चलो। कन्या बार बार आती है, देवर्षि की तरफ नहीं देखती है और इधर उधर निकल जाती है। देवर्षि समझते हैं कि जेही विधि कन्या और रूप को देखे, ऐसा कौन सा उपाय करें जिस उपाय के करने से कन्या हमारे रूप को देखे और जिस वक्त देखेगी माला हमारे गले में डाल देगी। बेचारे इधर से उधर बैठते हैं, खांसते हैं, खकारते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं कि कन्या आप देखे, लेकिन कन्या इनकी तरफ नहीं देखती है। कब तक प्रभु ने सुंदर रूप बनाया। उस समय समय को देख हरि ने सुंदर रूप बनाया है, उस समय हरि ने अब देखो हाँ सुंदर रूप बनाया है, सुंदर रूप बना। भक्तों के हितकारी भगवान ने भाव आज दिखलाया है। भगवान आज बताते हैं कि देखो हम अपने भक्तों के लिए क्या कर सकते हैं। अगर देवर्षि नारद भक्त ना होते तो प्रभु को ये अपनी माया क्यों फैलानी पड़ती। और प्रभु ने जो कहा है उसे पूरा तो करना ही है ना। कि करहूं सदा तीना की रखवारी, करहूं सदा तीना की रखवारी, सुंदर राजकुमार का रूप बनाया। प्रभु की माया ने देखा, प्रभु को पहचाना, गले में माला डाल दी। बाबा देवर्षि बहुत ही दुख में आज पड़े हुए हैं कि बात क्या है कि सबसे सुंदर शकल लेकर मैं आया और फिर भी मेरे गले में माला नहीं पड़ी। तब तक जो शंकर जी के गण बैठे थे ना, बोले बाबा एक बात कहा है। का कहो भैया, का आप अपनी शकल पर बहुत ही ज्यादा घमंड करते थे ना। हे मुनिवर, आप सकल पे अपनी इतराते थे देखो मन में, हे ऋषि मुनि आप मन में इतराते थे अपने मन में, उस सकल को मुनिवर जाकर तो जाकर देखो अब शीशे में, अरे जिस रूप पर आप फूले नहीं समा रहे थे जरा एक बार जाइए और शीशे में अपनी सकल तो देखो। शीशा कहाँ रखा था, पानी के अंदर जैसी सकल को देखा। और भैया जैसे बंदर की शकल दिखाई पड़ी ना, मारे क्रोध में आ गए। सोचा ये जुर्रत भगवान ने की, तो देखिए हारा हुआ बैल जो है ना अपने सामने वाले पर पहले वार करता है। शंकर जी के गण ही पड़ गए सामने मुस्कुराते हुए। तो अच्छा अब हम समझ गए कि तुम हमको देखकर क्यों हंसते थे, हमारे बूढ़े की मजाक क्यों बनाते थे। ठहर जाओ दोस्तों, इस मजाक का फल तुमको मिलेगा। पापियो तुम राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ तुम दोनों, पापियो तुम राक्षस हो जाओ, राक्षस हो जाओ तुम दोनों। तुम मुझे देख कर हंसते थे उसका फल अब पाओ दोनों, पापियों जाओ तुम राक्षस हो जाओगे। तुमको देखकर सारी दुनिया हंसेगी क्योंकि तुम हमको देखकर हंसते थे। और सोचा कि आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे। आज बुद्धि के विनाश हो जाने की वजह से उन प्रभु के पास में पहुंच गए, रास्ते में प्रभु जाते हुए मिल गए। आओ देवर्षि कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो ये पूछ रहे हो भगवान। अरे जिस कन्या के साथ मैं विवाह करने के लिए गया आप खुद उसके साथ में विवाह करके चले आए। मैंने आपसे शकल मांगी और आपने हमको बंदर की शकल दे दी, यही आपका स्वभाव है। कि पर संपदा सकहु नहीं देखी तुमरे ईर्षा परम भिषेकी, पर संपदा सकहु नहीं देखी तुमरे ईर्षा कपट भिषेकी। कोई भावई मन ही करऊ तुम सोई, भावई मन ही करऊ तुम सोई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करऊ तुम सोई। अरे आप दूसरे की दौलत को देखकर मन में ईर्ष्या रखते हैं, मैं तो समझता था आप अंतर्यामी हैं, भावुकता से भरे हुए हैं, लेकिन आज मुझको मालूम पड़ गया प्रभु आपके अंदर कपट है। और फिर कपट क्यों ना हो, परम स्वतंत्र हो ना, आपके ऊपर कोई शासन करने वाला तो है नहीं, जो इच्छा होती है कर डालते हो। लेकिन प्रभु याद रखो, आज पाला आपका देवर्षि नारद से पड़ा है, आज आप बच नहीं सकते। विपत्ति में पड़कर आपत्ति के समय पर बुद्धि के विनाश हो जाने की वजह से आज इतने महान ज्ञानी देवर्षि अपने प्रभु को ही श्राप दे बैठे कि बंचे ऊ मोही जऊने हूं धरी देहा सोई तन धरऊ साप मम एहा। वारे नारद आज प्रभु को ही श्राप दे रहे हैं, बंचे ऊ मोही जवन धर देहा सोई तानु धराऊ साप मम एहा। और इतना नहीं, नहीं प्रभु इतने पर भी शांति नहीं मिली, और क्या है, ममाया पुकार दिन तुम भारी नारी बिरहा तुम हो दुखारी। ममाया पुकार दिन तुम भारी तुम भारी नारी विराह तुम हो दुखारी। इतने पर भी क्रोध शांत नहीं हुआ, तीसरा श्राप देते हैं भगवान को, कपिया क्रति तुम दीन हमारी, कपिया क्रति तुम दीन हमारी करिहै किस सहाय तुम्हारी। बंदर की शक्ल आपने संसार में सबसे खराब समझकर हमको दी है ना, जाओ जब तक प्रभु वही बंदर आपकी मदद नहीं करेंगे आपकी जीत नहीं होगी। जिस प्रकार से आपने हमको नारी के वियोग में तड़पाया है, आपको भी नारी के वियोग में तड़पना पड़ेगा। प्रभु ने आज जब इनके हृदय के ऊपर से मायावी पर्दा खींचा ना, तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, गिर पड़े भगवान के चरणों में। आज प्रभु की प्रार्थना करते हैं के नाथ हमारे अपराधों को आप क्षमा कर दें, हम आपकी शरण में आए हुए हैं, हमसे भूल हो गई, ये हमने क्या कर डाला, घोर अनर्थ कर डाला प्रभु जो आपको ही श्राप दे डाला। इस शरण में तुम्हारी प्रभु आया हुआ हूं, बड़ा कष्ट है मैं सताया हुआ हूं। शरण में तुम्हारी बड़ा कष्ट है कभी सताया हुआ मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो स्वीकार कर लो मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो यही लाल साले के मैं आया हुआ हूँ यही लाल साले के मैं आया हुआ हूँ शरण में तुम्हारी प्रभु जी आया हुआ हूँ ये तो बताओ मेरे कष्ट कैसे दूर होंगे ये मेरा पाप कैसे दूर होगा प्रभु ने कहा देवर्षि चिंतित क्यों होते हो मैं तुमको उपाय बताता हूं जपहु जाई शंकर सतनामा होई है हृदय तुरत विश्रामा मैं उपाय बताता हूं कि जपहु जाई शंकर सतनामा जपहु जाई शंकर सतनामा जपहु जाई शंकर सतनामा होई है हृदय तुरत विश्रामा निश्चर जाई हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो निश्चर जाई हो तुम दो वैभव विपुल तेज बल हो समर मरण हरि हाथ तुम्हारा होई हौ जो कतना पुनि संसारा होई हौ सुकतना पुनि संसारा या प्रसंग में कहा भवानी या प्रसंग में कहा भवानी हरि माया मोई है मुनि जानी शंकर जी के 100 नामों का जाप करो तुम्हारा कल्याण होगा लेकिन तब तक वही शंकर जी गण आए सामने कहा महाराज आपने हमको क्यों श्राप दे डाला अब ये तो बताइए हमारा उद्धार कैसे होगा कहा जाओ तुम राक्षस जरूर बनोगे लेकिन इतने प्रतापी राक्षस बनोगे कि स्वयं श्रीहरि तुमको अपने हाथों से मारेंगे और तब तुम्हारा कल्याण होगा बोलिए भक्त और भगवान की तो साथियों इस प्रकार से हमने राठौर कैसेट के माध्यम से आपको इस सबसे रामायण का प्रथम चरित्र जो है नारद मोह सुनाया और इससे आगे के चरित्र आपको राठौर कैसेट के माध्यम से ही प्राप्त होते रहेंगे।